તારીખ 31/3/1991 શ્રી દ્રવ્યદ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ નંબર 11, 14, 24, 33, 44 અને 57 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું પાવાપુરીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 7
અપેક્ષા છે તો શુદ્ધ પર્યાય દીપ પણ તમે જો મેરે અસ્તિત્વ મેં વો નહીં તો ફિર રાત કી તો બાતી ક્યા દ્રવ્યદ્રષ્ટિ કી અપેક્ષા અર્થાત દ્રવ્ય સ્વભાવ મેં અહમ ભાવ શ્રદ્ધા કા પરિણામ હોના દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ કી અપેક્ષા મેને ક્યા કે દ્રવ્ય સ્વભાવ મેં અહમ ભાવ રૂપ શ્રદ્ધા કા પરિણામ હોના મને અપની મૌજૂદગી કો સત્તા કો સ્વભાવ કી સત્તા કો શ્રદ્ધા ગ્રહણ કરતી હૈ વો દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ હૈ એસી શ્રદ્ધા હોને પર હી પર્યાય શુદ્ધ હોતી હૈ उसके पहले तो पर्याय शुद्ध नहीं होते परंतु उसमें अहम भाव नहीं करते पर्याय शुद्ध होने का कारण ऐसी श्रद्धा है फिर भी श्रद्धा तो उसमें अहम भाव नहीं करते या तो श्रद्धा का जो विषय द्रव्य स्वभाव है उसमें अस्तित्व की मर्यादा बिना पर्याय ही समाप्त होती है इसलिए ऐसा कहा कि मेरे अस्तित्व में वो शुद्ध पर्याय भी नहीं मेरे अस्तित्व में शुद्ध पर्याय नहीं मेरे अस्तित्व में प्रमाण का विषय बुद्ध द्रव्य नहीं ऐसा द्रव्य दृष्टि मतलब ये स्वभाव दृष्टि उसके पर्यादा मर्यादा में कोई पर्याय का अस्तित्व एक ही द्रव्य स्वभाव निश्चय का विषय भूत भी है और व्यय का विषय भूत नहीं लेके उसको अनुभव स्वरूप भी कहा पहुंचा दिया तो अनुभव रूप कहा वो श्रद्धा के हिसाब से कहा और ज्ञान के हिसाब से कहा तो अन्य का विषय बना दिया क्योंकि श्रद्धा में कोई भेद नहीं पड़ता द्रव्य में पर्याय का ज्ञान में पर्याय को पर्यायार्थिक पर्याय का ज्ञान को पर्यायार्थिक नहीं कहेंगे द्रव्य का ज्ञान को द्रव्यार्थिक नहीं कहेंगे दोनों को अयुक्त ज्ञान को प्रमाण कहेंगे ये तीनों बात ज्ञान में व्यवस्थित रूप से ऐसे आती है जबकि श्रद्धा से कहते हैं तो क्या अनुभव स्वरूप है तो इसमें जो है ये अगर हमें ये समझा सके अलवर के अपने वाहन चमका रहे हैं विद्वान उभय मैंने दो, उभय क्या तो पद समस्त है कि उभय मैंने दो, और दो भी नहीं तो अनुभय, तो अनुभय मैंने कौन सा, तो न द्रव्य रूप न गुण रूप न पर्याय रूप, क्योंकि उसमें तो भेद होता ही नहीं श्रद्धा में। श्रद्धा में कैसे भेद नहीं होता, वो ज्ञान जानता है अच्छी तरह, तो ज्ञान वो ऐसा भी जानता है कि अनुभव स्वरूप भी है श्रद्धा के अपेक्षा, तो किसी भी तरह से वो सेट नहीं हो पा रहा। जगह जगह पूछते हैं इसी बात, ये प्रश्न तो उठाया है पंडित कैलाश चंद जी ने, बुलंदशहर वाले ने, वो सात भाग लिखे प्रश्न उत्तर वाला करेंगे, सात भाग बनाए अन्य अन्य ग्रंथ शास्त्रों में से, तो ये पंचाध्याय के पूर्वार्ध के 761-62-63 गाथा में इसकी चर्चा चली। उसको कैलाश चंद जी ने भी कोई संतोष रूप से उत्तर नहीं मिला उनको, वो लालचंद भाई को पूछते रहे, गुरु जी को पूछते रहे, पंडित विनोद भाई को स्वर्ण घर जाकर पूछते रहे। अब तो बात चली आगरा में, बताया मुझे कहीं संतोष नहीं हो रहा है, तो बात जो है सेट नहीं हो रही, श्रद्धा में कहाँ भेद पड़ता है, श्रद्धा का विषय गुरु जो द्रव्य स्वभाव है उसमें कहाँ भेद पड़ता है। इससे यहाँ से ये बात ली जाकर, क्योंकि इन दिनों में ये चर्चा चलती चलने वाली थी, ज्ञान में ज्ञान स्वभाव जो होता है, इस ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वभाव आत्मा पहचाना जाता है, तो ये जो स्वभाव व्यक्त है वही स्वभाव अव्यक्त रूप से त्रिकाली में है, द्रव्यों में, और व्यक्त अव्यक्त दो दोनों में दो टुकड़ा नहीं है, एक खंड नहीं है, ऐसे तो न व्यक्त रूप है न अव्यक्त रूप है, इससे भी अनुभव रूप है, वैसे पर्याय में व्यक्त होने पर भी इसको पर्यायत्व लागू नहीं होता, और द्रव्यों में होते हुए भी उसको द्रव्यों का भेद लागू नहीं होता, ऐसे निर्भेद स्वभाव को ही स्वभाव कह सकते हैं, वो तो माथा खराब हो गया है। तो सेंसेटिव आदमी दिखता है तो उतना डिप्रेस हुआ है, इतना डिप्रेस हुआ है कि शुरू शुरू में तो उसको डिप्रेशन के लिए मेडिसिन देना पड़ा है। तो अगर मैं चर्चा चल दूसरे दिन बाद में नींद नहीं आती है खा कर, अच्छा नींद नहीं आवे वो तो अच्छा है, जहाँ तक समझ में नहीं आवे वहाँ तक नींद आनी भी नहीं चाहिए, अब वो चाय ही पीएंगे। शब्द का अर्थ जो है वो अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हैं, फिर वही शब्द का अर्थ दूसरा आता है तो उनको पता नहीं चलता है ये क्या हो रहा है। फिर मैंने एक दृष्टांत दिया अपरिणामी वाला, स्वर्णगढ़ में हलचल मच गई है, परिणामी जो है किसी ने सुना ही नहीं था, वो ही नहीं सकता, लेकिन तुम जिज्ञासा में रहो तुम जजमेंट क्यों देते हो, वो ही नहीं सकता, जजमेंट कहाँ से देता, यहाँ तो तुम्हें पता ही नहीं है चीज का, तो जजमेंट देने का अधिकार कहाँ से। बात समझ में नहीं है तो हमारा पति के हमारे समझ में नहीं आता, ये वो ठीक नहीं है ऐसा कैसे कर, तो गुरुदेव प्रशंसा करे गुरुदेव के भक्त है वो ठीक नहीं है, ऐसा आपको डिसिप्लिन नहीं है क्या, કોમન સેન્સ એ વાત છે. બુદ્ધિજીવી લોગ તો સમાજ મેં ભી કભી કરીબ કરીબ બુદ્ધિજીવી લોગ ઉનકો તો યે પતા હૈ કે યે તો મહાપુરુષ હૈ, ઉનકે આગે હમ કુછ નહીં હૈ. ઇસલિયે કોઈ બાત સમજ મેં નહીં આયે, કોઈ હમારા શક્તિ કે બહાર કી ચીજ હૈ. સબ
કુછ જો આ ઘર મેં વો આકે બેઠે દૂસરે
કે આકે હર હમ તો યે ભાવ આતા હૈ. ભાજી બોલા સમજો મહાનતા ભાષિત નહીં, આપણી લઘુતા સાથે સાથે પ્રકાશ મેં અનુભવ વર્ણન મેં સ્પષ્ટ લિખા હૈ અનુભવી પુરુષ પૂજ્ય હૈ. વહાં વો ચર્ચા ચલી ચલી ગઈ એક મુદ્દા પર રાત્રિ ચર્ચા પંચ પરમેષ્ઠી પૂજ્ય હૈ લેકિન સત્પુરુષ ઓર જ્ઞાને જો હૈ ચતુર્મહી અવિરતે હોય પૂજ્ય નહીં હો સકતા. શાસ્ત્રો મેં દિયા બાત નહીં ચતુર્ગ્રહ ક્યાં અભિપ્રાય દિયા નહીં જો મેરા આચાર્ય હૈ અભિપ્રાય દિયા. પરિચય કરે ભાવ કો વાસ્તવ મેં શ્રદ્ધા કા પરિણમન કેસે હોતા હૈ. બિના પરિચય ભાવ ભાષણ તો હુએ નહીં, તો ભલે હિ પરિણમન વિપરીત હો અજ્ઞાન દશા મેં લેકિન અપને પરિણામ કો દેખતે હૈ પરિણામ કા અનુભવ કો જીતની સૂક્ષ્મતા સે હો સકે ઉતના દેખને કા અભ્યાસ અગર હો ગયા તો પરિચય બડે તો ઉસમેં ગુણ ક્યા ચીજ હૈ ઉસકા પતા ચલતા હૈ. ગુણ મેને સ્વભાવ શ્રદ્ધા સમ્યક યા શ્રદ્ધા અસમ્યક કુછ ભી લેકિન દોનો મેં શ્રદ્ધાપણા તો સામાન્ય હૈ. ગુણ કા તો કાર્ય હોતા હૈ વિપરીતતા અવિપરીતતા કો હમ પરધર નહીં દેખે તો શ્રદ્ધાપણા ક્યા હૈ ઉતના દેખે તો ભી શ્રદ્ધા તો પતા ચલે કે શ્રદ્ધા ક્યા ચીજ હૈ. એસે સર્વગુણો મેં ગુણ તો પ્રગટિ હૈ પ્રગટ હોતા હી હૈ ફિર ભી ઉસકો પર્યાય તો લાગુ નહીં હોતા. પર્યાય તો સમ્યક અસમ્યક પર્યાય તો મેં જાતા હૈ
देखना चाहे तो पकड़ सकते हैं। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में तो अपरिणाम मिली है वो बात है ना, 380 है उतना तो कोई ध्यान जाता नहीं लोगों का, तो ऊपर से पास हो जाता है इतना माइनॉरिटी को ध्यान नहीं देते। ये तो बार बार कहते हैं अपरिणाम है इसलिए कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वो भी बोल देते कभी वैर के समय पर ध्यान नहीं देता लोगों ये अपरिणाम क्या बोले, लेकिन वो तो बोलते ही यहाँ से कि मैं तो अपरिणाम ही हूँ, यहाँ से तो बात चालू होती परिणाम की चर्चा चले, या तो सुधार बिगाड़ तो परिणाम में, सुख दुख भी परिणाम में, और सारी बात तो है पर प्रयोजन भूत तो परिणाम विषय ही होता है, प्रयोजन तो सब परिणाम में ही होता है, तो चर्चा तो ज्यादा चले परिणाम की और वो चालू करे है परिणाम से, तो ये बात थोड़ी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आने लगी, ये क्या है।
बिल्कुल पूछ सकता था, मैंने कहा होता तो अनुशीलन तो आपको तो कहो मैंने पूरा नहीं पढ़ा
अजीत रहे वो इतना समझ भी नहीं सके, पद्धति अलग है इनके समझने की, अपनी पद्धति अलग है बिल्कुल, वो पकड़ नहीं पाए क्या कहना चाहते हैं। विचार पद्धति है समग्र, तो विचार पद्धति इसके साथ साथ अनुभव पद्धति कैसे होती है, तो विचार के साथ साथ ही अभी तो मुमुक्षुओं को तो विचार के साथ साथ अनुभव पद्धति क्या हो तो चर्चा ही नहीं चल रही है अपने समग्र में चलती है क्या, और कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे।
तो प्रयोग पद्धति की बात भी तत्वानुसंधान के बाद ज्यादा चल रही है, हाँ
तो बात तो खुले रखे खोल कर रखे,
ये जिस निष्क्रिय शब्द का पहले प्रयोग होता था 40 वर्ष पहले गुरुदेव के प्रवचनों में निष्क्रिय शब्द का प्रयोग है,
ये भी बहुत कम है,
लेकिन निष्क्रिय का अर्थ जो
लिया राग की क्रिया नहीं करे वो निष्क्रिय, निष्क्रिय में से तीन अर्थ निकलता है कि मैं ये एक ना कागज को उठाने के लिए निष्क्रिय आत्मा है, क्रिया नहीं कर सकता उसको निष्क्रिय,
पर की क्रिया नहीं कर सकता,
पर की क्रिया नहीं कर सकता, आगे चले तो राग की क्रिया नहीं कर सकता, लेकिन परिणाम रूप क्रिया नहीं कर सकता है, पारिणामिक भाव बोला परम पारिणामिक भाव से तो प्रसिद्ध है, और परम पारिणामिक भाव वही निष्क्रिय द्रव्य है और वही अपरिणामी है, परिणामी कहने पर भी अपरिणामी है, ये बात कहां से
उन प्रवचनों के
विरुद्ध लगता है,
उन प्रवचनों के अंदर पर की अपेक्षा से निष्क्रिय शब्द का जिन्होंने प्रवचन झीला है उन्होंने ज्यादा प्रयोग किया है।
समय सार में बहुत सी बात राग से भिन्नता की चली है, एक समय का परिणाम का एकर्तृत्व है वो बात प्रसिद्ध रूप से चली है, हाँ ठीक है था मैं वो बात जोड़ा कि मैं वो नहीं प्रमत अप्रमत नहीं हूँ मैं शुद्ध हूँ, टीका में आचार्य टीकाकार आचार्य क्या कहते हैं कि पर से भिन्नपणे उपासना करते हुए सिद्ध शुद्ध कहते हैं, तो उपासना होगी पर्याय, उपासना होती है पर्याय, तो बात पर्याय अपेक्षित वहां ले ली टीका में, तो ये बात तो बिल्कुल नहीं लगती। लास्ट टाइम पावली सोनगढ़ से गए तो सारे राजकोट मंडल वाले आए थे, प्रतीक भाई के घर पे ठहर गए, डॉक्टर चंदू भाई वगैरह सब आए थे, तो वहाँ होके आए थे मुंबई से वाया राजकोट आए थे सोनगढ़, तो सब आए इंटरेस्टेड जो थे मुख्य मुख्य आदमी सब आए थे, ये बात कैसे चलती है कहेंगे परिणाम बिना का ग्रह के बाद में ये चर्चा चली थी आकर बात बहुत बिल्कुल क्लियर है, बिना परिणाम के ही बात होती है, बात नहीं तो किसी के विचार में नहीं आई थी। फिर तो कहीं जगह से आधार लिया समय सार में से। मतलब जिस ढांचे में होते हैं वहां से निकलना, सारी साइकोलॉजी को टर्न अप करना पड़ता है, वो इतना आसान नहीं
है। उन दिनों के जो प्रवचन मैंने देखे 40 वर्ष पहले प्रवचन जो देखे उसके अंदर भी ये जो निष्क्रिय शब्द का अर्थ जो दिया है इन लोगों ने, वांछन जो जिन्होंने वांछन लिखे हैं उन लोगों ने स्नातक के ऊपर से ही कर्तृत्व की बात है।
तो गुरुदेव के व्याख्यान में वैसा ही बात आया होगा, मर्यादित बात ही आया होगा। गुरुदेव के व्याख्यान में भी मर्यादित बात ही आया होगा।
नहीं, कभी कभी आता था, पहला 11 नंबर का अंक में सारी बात दिया है तो कभी यार वो खुद ही बोले गुरुदेव कि हम कभी कभी विटाल करके बीच में रख देते थे इस बात को, खुला नहीं कहता था। सुगाने ने कहा वहां से अब खुला कर दिया है, ऐसा करके तो बोले राजपुत्र। चर्चा चलने लगी, ओपन चर्चा चलने लगी तब वहां तो खुला कर दो, फिर इतना नहीं कहते थे। कभी कहते थे तो कभी कहते थे उन्होंने पकड़ा, नए आदमी ने रोज को सुनने वाला नहीं, वो पकड़ा नहीं, ये बात हुई ना। मतलब कितना शार्प होता है, सूक्ष्म कितना होता है, ज्ञान कितना सूक्ष्म होता है।
प्रवचन में एक लाइन में कोई बात आ गई
वो प्रकाश में कि स्वरूप प्राप्ति की भली भावना जो है वो साधक है और ज्ञान के विशुद्धता साध्य है, ऐसा करके लिया है। ज्ञान के विशुद्धता का कारण है वो फर्स्ट टाइम आए वो पकड़ लिया, और 30 साल से सुने वो नहीं पकड़े, क्या है बुद्धि क्या बुद्धि, बुद्धि तो होती है लेकिन निर्मलता नहीं,
भली भावना नहीं है,
भावना नहीं है वो, भावना तो उतने लेकर के आए थे, निर्मलता तो थी, सीधा फोटो पड़ता है जो भी निकलता है शब्द भाव भाव को पकड़ लेते हैं। तो मलिन ज्ञान मति ज्ञान, मति मलिन होने से मति दोष से वो पकड़ने में नहीं आते, स्वभाव निर्मल है तो निर्मलता से ग्राह्य है, पर मति मलिन है मति दोष है तो निर्मल स्वभाव कैसे ग्राह्य होता है, ग्रहण नहीं होता है। बस यही दिक्कत नंबर
जी हाँ
चौदह ज्ञान का विषय दृष्टि के विषय का प्रयोजन साधने जितना ही लक्ष्य में लेना ठीक है। देखिए क्या स्टाइल है, जो भी ज्ञान का विषय हो जितना भी हो हमारे दृष्टि के विषय का प्रयोजन साधने में उसका क्या पार्ट है, कितना रोल है, बस उतना हम लेंगे उसमें, बाकी जाने दो उपेक्षा, जितना भी ज्ञान का विषय हो उपेक्षित कर दो, फिर कहाँ रुकने का होगा, कहाँ रुकने का होगा। फिर ज्ञान का विषय में जब रुकने का नहीं होते फिर राग का विषय में रुकने का कहाँ सवाल पैदा होता है। कितना तीक्ष्ण दृष्टिकोण है ये प्रयोजन सिद्धि के लिए। ज्ञान का विषय दृष्टि के विषय का प्रयोजन साधने जितना ही लक्ष्य में लेना ठीक है, बाकी उसका मैंने ज्ञान के विषय का उसका मैंने ज्ञान के विषय का उससे अधिक हमें प्रयोजन ही नहीं है।
अब बताइए किस शास्त्र में था ये चीज आप निकाल कर देते हैं, कितने शास्त्र पढ़े हैं, कोई शास्त्र में से निकाल दे
दो।
कभी ऐसा होता है कि जो ज्ञानी जो बात करते हैं जो अनुभव से मिले शास्त्र में से आप ढूंढने जाओ नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत से बातें श्रीमद जी में है इसमें है, और गुरुदेव को जयचंद जी का भावार्थ कभी पढ़ते पढ़ते ही बात करते थे कि देखो जो बात आचार्यों ने नहीं की उसे भी भावार्थ में उसने कहाँ से निकाली जाओ। सात्विदार्था का भावार्थ है, ग्यारहवीं का है, और एक निर्जराधिकार पूर्ण करते बहुत लंबा लिखा है जयचंद जी ने, शास्त्र में से नहीं मिला। अभी प्रयोजन के विषय की भी बात किस तरह से हैंडल करना है ये बात शास्त्र में से ऐसा निकलेगी। इतने शास्त्र पढ़े हैं ये बात कहीं से निकलती है क्या, उपयोग को मानवा एक नहीं है, नहीं निकलती।
राजमती ने भी कई बार
खोली सभी ज्ञानियों में विशिष्टता होती है, भले ही चतुर्थ गुण स्थान बोलते लेकिन ऐसे विशिष्टता होती है। तो जो आचार्यों के शास्त्र में नहीं मिले वो बात उनको मिलती है, यहाँ से मिलती है उन लोगों तो उन लोगों को तो कीमत है, ज्ञानियों की कीमत है, इसलिए तो प्रशंसा करते हैं। नीचे गुणस्थान वाले होने पर भी क्यों प्रशंसा कर रहे हैं, ये प्रकार है। लोगों को मूल्य नहीं है चीज का, मैं तो ऐसा लगा अरे इतने ग्रंथ पढ़े हैं ये बात कहीं देखने में नहीं आती है, एक चीज तो है तो रतन है, उसकी कोई संख्या थोड़ी माड़ू की तरह होती है रत्नों के, तो कहीं मिलता है एक जगह। प्रयोजनभूत स्वरूप के अलावा जानने में आते हुए सभी जीव में ज्ञान को अपना प्रयोजन भाषित नहीं होता, फिर भी देखो अभी इसका संतोष नहीं होता है इतना खुला समय अब तो चर्चा चले तो वो तो इतना जनरलाइज किया है कि ज्ञान का कितना भी विषय हो प्रयोजनभूत स्वरूप के अलावा बजाय इसके ऐसा निकलता है कि प्रयोजनभूत स्वरूप को साधने जितना ही प्रयोजन है, प्रयोजनभूत स्वरूप के स्वरूप को साधना उतना ही प्रयोजन है, इसके सिवा जो भी है वो अपने अपने लिए अप्रयोजनभूत है, प्रयोजनभूत नहीं है परंतु अप्रयोजनभूत है, उतना लेना चाहिए।
प्रयोजनभूत को साधने जितना ही
प्रयोजनभूत स्वरूप को साधने
जितना ही
जितना ज्ञान का विषय,
ज्ञान का विषय
लक्ष्य में लेना,
लक्ष्मी ज्ञान।
इसके अलावा सब अप्रयोजन में जाता है,
अप्रयोजन भूत में जाता है।
इसके अलावा बाकी ज्ञान का विषय, बाकी ज्ञान का जितना भी विषय है अप्रयोजन
मैं तो ऐसे लिखा है, प्रयोजन भूत स्वरूप को साधने जितना ही ज्ञान का विषय लक्ष्य में देना, इसके अलावा सर्व विषय सर्व अप्रयोजन भूत में जाता है। प्रयोजन भूत स्वरूप को साधने जितना ही ज्ञान का विषय लक्ष्य में देना इसके अलावा सर्व अप्रयोजन भूत में
ज्ञान का विषय
सर्व ज्ञान का विषय सर्व
ये जो प्रयोजन के बुद्ध के विषय में मार्गदर्शन है, सब्जेक्ट देखे तो उतना है, प्रयोजन बुद्ध के विषय में मार्गदर्शन
जिससे दृष्टि सदे
बस
बस महत्व
दृष्टि का विषय सदे उतना ही है। या तो दृष्टि का विषय जब तब सकता है कि जब ज्ञान के विषय से भी दृष्टि को पोषण मिलता हो, तो हमारे दृष्टि को अगर पुष्टि नहीं मिलती, स्वरूप दृष्टि को पुष्टि नहीं मिलती, तो हमें कोई चीज काम की नहीं है, बस मर्यादा हो गई।
देखिए विवक्षा में ज्ञान के विषय में दृष्टि के आधार से उसका औचित्य जो है संदर्भ और विवक्षा की अपेक्षा जो है ज्ञान की है आधार दृष्टि
प्रयोजन भूत विषय कितना इसका उत्तर है अपने को प्रयोजन भूत विषय कितना शास्त्र में कि हमारी दृष्टि को पुष्टि मिले उतना बस बात खत्म। इससे आगे हमें कोई लेना लक्ष्मी
लक्ष्मी का तो प्रयोग किया है उतना ही लक्ष्मी लेना ठीक है।
बस कहीं से भी हमारे दृष्टि को पुष्टि मिलती है तो हमारे लिए प्रयोग है, हमारे दृष्टि को अगर पुष्टि नहीं मिलती है तो उतना जनरलाइज किया है तो कोई बात लिमिटेड नहीं है।
गोपालो जी ने तो लिखा है इससे हमारे आत्म के भाव आविर्भाव होता है।
बस दृष्टि का विषय अगर को पुष्टि मिलती है तो बात सही है, उसके साथ उसका अटैचमेंट रहता है, कोई अनुसंधान रहता है तो बात ठीक है। स्वभाव आविर्भाव होता है तो स्वभाव तो दृष्टि का विषय है, आविर्भाव में पुष्टि हुई ही।
संक्षेप में सारा ये बात यहाँ आ गया।
बात में ऐसा है कि प्रयोजन भूत विषय को भी कभी कभी जानने का विषय बना देता है, जानने का विषय को भी जीव कभी कभी प्रयोजन भूत में ले जाता है। ये गड़बड़ी यहाँ से नहीं हुई है, ये जो डेफिनेशन है बहुत परफेक्ट है।
परमार्थ सदे बात हुई है।
एक आदमी उसी जगह से परमार्थ साधता है और एक उसी से परमार्थ नहीं साधता है, ऐसे दोनों घटनाएं बनती है।
परमार्थ नहीं साधता, गड़बड़ भी होगी, उल्टी गड़बड़ भी कर सकता है, इसलिए वो तो वहां तो सिग्नल कर दिया है। इसको साथ में रखो इस मार्गदर्शन को तो कहीं भूलने वाले नहीं, एक भी जगह नहीं भूलेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। दृष्टि दृष्टि विषय जो शुद्धात्मा स्वरूप ने साधवू है, सिद्ध स्वरूप ने साधवू है, परंपरा ए पण स्वरूप ने साधवू। क्या सुधी दृष्टि पहुंची क्या सिद्ध स्वरूप साधवा मे परंपरा थी स्वरूप साधन में जाए मारा पोता दरेक जीव जुदी जुदी योग्यता जे जीव जे योग्यता पास करी गयो प्रयोजन नहीं પોતાના માટે આ પ્રયોજન દરેક એ જોઈ લેવાનું છે કે દ્રષ્ટિના વિષયનું પ્રયોજન સાધવા માટે આ મારે લક્ષમાં લેવા લેવું જે છે કે નહીં, બસ પિન પોઈન્ટ વાત આટલી તપાસી લેવાની છે જયારે બી જે વાતનું લક્ષ્ય કરીને હોય ત્યારે આ વાત બહુ પકડે છે 24 નંબરમાં છે। पहले तो तत्व की धारणा बराबर होनी चाहिए, लेकिन धारणा अंतर में उतरे तभी शून्य ज्ञान होता है। धारणा में भी इधर का मैंने आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए। मतलब धारणा स्वलक्षी होनी चाहिए, स्वलक्षी धारणा प्रयोग के उत्पादक होती है और प्रयोगित धारणा में धारण किया हुआ उपदेश जब अंतर में उतरता है तभी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है। क्या है कि अपने यहाँ तो कईयों को तो धारणा नहीं होती है, मैंने समझ नहीं सकते बात को, लौकिक बात तो है नहीं, अलौकिक बात है, पर कुछ कोशिश करके समझते हैं तो फिर उन्हें हम आ जाता है कि चलो उनको ज्ञान हुआ, पहले नहीं ज्ञान हुआ अभी ज्ञान हुआ। यह तो कहते हैं कि धारणा बराबर हुई उसी वक्त अंतर में उतरने उस चीज को जिस उद्देश्य को इस बात को अंतर में उतारनी है जब ही समय ज्ञान होगा तो बात पहले से लक्षण होनी चाहिए। धारणा हो तब धारणा हो, धारणा हुई तो काम नहीं हुआ, काम अधूरा है ऐसे लगना चाहिए। धारणा होने से उसी वक्त लगना चाहिए कि ये काम अधूरा है, इसको प्रयोगान्वित करके अंतर में उतारना है, ये काम बाकी है। तो उपदेश तो मिला लेकिन मिला कब के अंतर में उतरे तब ना तो धारणा रहेगी, धारणा है वो मिला नहीं है। साथ बोलते गुरुदेव उससे हमें बहुत मिला है तो उतरा तो हमें नहीं, लेकिन पहले वो बात जानते नहीं थे, हमें ये जानने को मिली तो हमको मिल गया, जानने को मिली इसका नाम मिल गया नहीं है, अंतर में उतरी तो इसका नाम मिल गया, दोनों बातें बहुत बड़े अंतर है। तो अंतर में कब उतरेगी, जब धारणा हो गए उसी वक्त ये बात लक्ष्मी हुए कि उसका प्रयोग जब करेंगे प्रयोग होगा तभी अंतर में उतरने वाली है, उसके पहले अंतर में नहीं उतरी है, सिर्फ जानने का हुआ है, इंफॉर्मेशन मिली है।
सुनने से धारणा बनती है, सुनने से धारणा बनती है, मन सुनने
सुनने से पढ़ने से विचारने से तपस्या करने से।
तो उसके पूर्व ही ये रेड लाइन
लाइट आ रही है, तो शुरू से होना चाहिए, शुरू से यही उपाय होना चाहिए कि धारणा तो जब अंतर में उतरती है उसका प्रयोग होता है तब, इसके पहले तो अंतर में उतरती है। प्रयोग एक ही प्राप्त ज्ञान को परिणमन कराने का एक साधन है, समझ को परिणमन कराने का साधन तो प्रयोग ही है। अब तो धारणा होने होने वाले बहुभाग को तो यही पता नहीं है कि प्रयोग क्या है, प्रयोग मैंने क्या क्या करेंगे, प्रयोग कैसे करें, ये तो प्रश्न उठता है आजकल।
श्रवण करना, मन करना, इन बातों पर विचार चर्चा करना, ये पूरा हो गया बात।
समझे हैं तो बार बार उसी को पढ़े, बार बार उसी को समझे और दृढ़ करते रहे तो दृढ़ता हो जाएगी, तो परिणमन हो जाएगा। ये कल्पना कर ली, परिणमन करने के लिए ये जो साधन है एकमात्र प्रयोग, उसी को छोड़ करके कल्पना करके जो साधन नहीं हुई तो साधन मान ली। हम बार बार पढ़े, बार बार सुने, दृढ़ करते रहे, दृढ़ करते करते इतनी दृढ़ता हो जाएगा कि परिणमन हो जाएगा, बात बिल्कुल झूठ है,
गलत नहीं कहता हो गया।
हाँ
हो गया,
मुझे अटक कर साधन की भूल हुई ना, जिसके साधन जूठा उसका साध्य तो होने वाला है ही नहीं सकता, उसका साध्य तो हो ही नहीं सकता जो साधन जूठा है। इसी में तो अड़ गए ना चंदुआ, इसी में अड़ गए, जरा भी भूल होगी ग्रहित हो जाएगा, नहीं ग्रहित कैसे हो सकता है, देव गुरु शास्त्र तो हमारे सच्चे, हम तो दिगंबर है, क्या दिगंबर, सुरक्षण पर क्या लेना देना है,
लेकिन पर स्वतंत्र नहीं, मुसलमान ऐसा होता है जो ग्रहित होता है उसी वर्ग में चला गया। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बात तो करें हम परमात्मा होने की, उसकी कोई गंभीरता नहीं है। ये घूस लड़ाई के तो कितना सीरियस होगा, आपको युद्ध भव का एक प्रसंग है, पूरा भव नहीं है भव का, आगे कुछ उम्र निकल चुकी है, आगे निकलने वाली भी है, एक आइटम है उसका, इतनी गंभीरता एक आइटम है, अनेक साल का एक आइटम है अहंकार सुधरता है इससे तो सीरियस हो गया, उनका दर्जा तो कौन सा ले रहा है, तो उनका दर्जा तो गिनते हैं।
बीच में कौन चौवालीस में भी है, तैतीस में चौवालीस में
भूल देने की,
हाँ भूल देने की।
निर्विकल्प उपयोग में कैसा आनंद आता है, उत्तर, निर्विकल्प उपयोग के सुख की तो क्या बात है, लेकिन समझाने के तौर से जैसे गन्ने के रस की बूंद पीते हैं वैसे आनंद की बूंद एक के बाद एक चलती ही रहती है, उसमें उसमें से निकलने का भाव ही नहीं आता, तो उसमें से निकलने का भाव नहीं आता लेकिन पर्याय दृष्टि से पर्याय प्रधान भी कथन तो आएंगे, इसका मतलब नहीं कि पर्याय की प्रधानता वो तो तरफ दृष्टि नहीं रहती, ये बात तो है। क्योंकि भीतर में तो है जो आनंद का समुद्र है, ये घूट है, घूट है समुद्र है, समुद्र है तो समुद्र है, आनंद सागर वो भी बिना बॉटम तल नहीं है जिसका, उतना जो उपमा है वो भी
कोई कोई भी उपमा से वो तो अनुपम है, इसकी उपमा तो छोटी पड़ती है, उपमा की कोई पहुंच नहीं है, इसलिए तत्व को अनुपम कहा गया। बात का तो क्या विषय बने फिर, जिसकी कोई उपमा नहीं मिले वो बात का विषय कैसे बना। नाम दे देंगे तो सुख है, नाम दे देंगे तो आनंद है, शांति है, नाम है, उसके चीज का जो वाच्य है वहां तक ज्ञान जाता है तो रस आता है, ज्ञान नहीं जाता है तो रस नहीं आता। वाच्य तब ज्ञान जाता है तो रस आता है, किसी को ज्ञान रस के न करते करते स्वरूप का भाव भाषण होता है। भाव भाषण होने से जितना महान है उतनी महानता, जितनी महिमा है तो उतनी की उतनी महिमा भाषित होती है। उस महिमा का विषय गुण जो तक पहले तो निर्विकल्प है, इतनी महिमा निर्विकल्प तत्व की महिमा की परिणति जो है उसका घुटन होता है, घुटन 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 उसका जो रस है वो गाढ़ा होता है, उसमें से निर्विकल्प तत्व जाती है, तन्मय जाती है, तीव्रता होती है। लक्ष्य नहीं, घुटन पर लक्ष्य है, न सविकल्पता पर है न निर्विकल्पता पर है, जिसकी महिमा है उस पर लक्ष्य है। राग रहित तत्व है, महिमा भी राग रहित तत्व की है, तो महिमा करने वाले जो परिणाम है उसमें राग से जो महिमा होती है जितनी, उसका तो उसके साथ कोई संगतता नहीं है, सुसंगतता नहीं है। राग और इसका विषयभूत वितरागता सुसंगतता नहीं रहती, विसंगतता है। तो वितरागी तत्व की महिमा ज्ञान में वितरागी तत्व है, लक्ष्य में वितरागी तत्व है, तो वितरागी तत्व की महिमा उतनी बड़े कि महिमा करने वाले को कुछ रूप होना हो उतनी महिमा बढ़े, महिमा करते करते कुछ रूप हो जाए, उस रूप होते ही वितराग हो जाए। सम्यक दर्शन से लेकर जितने भी परिणाम हैं आध्यात्मिक परिणाम, वो तो स्वरूप महिमा के सिवा कुछ नहीं, सिर्फ स्वरूप महिमा है। इसका लक्षण मार्केट में किसी की भी उपमा लेंगे, लेकिन किसी विषय से जिनको तृप्ति तो होती नहीं, यहाँ तो तृप्ति होती है। ये बात इसलिए उतना बैठते नहीं पूरी किसी भी विषय की उतना तो बैठते नहीं अपनी ओर से खिसक कर बाहर जाने का ही निषेध है तो अशुभ में जाकर पर में रस पड़ जावे तब तो दृष्टि अपने द्रव्य में रहेगी कहा तो पर में चली गई। मिथ्या दृष्टि जीव को प्राय भोगों को भोग में अशुभ परिणाम में रस आता है जो सुन मिथ्या धोखे स्वभाव का द्योतक है। संक्षेप में ले लिया है। बात यह है कि ज्ञानी के भी अशुभ योग और उपयोग को समझते हैं तो समझने वाले ये समझते हैं कि जैसे मिथ्या तो अवस्था में रस आता है वैसे उसको भी रस आता है ये बात नहीं है। ये रस आना भगवत भोग में रस आना कोई मिथ्यात्व के सद्भाव को प्रकाशित करता है। मिथ्यात्व के सद्भाव में ही रस आता है सम्यक्त्व के सद्भाव में रस नहीं आता। ये अशुभ में भी वो रस रहित परिणाम चलता है या निषेध में उतना चलता है।
इस प्रणति का अवलोकन इस प्रणति की ज्ञानी की इस प्रणति की पहचान अवलोकन ये करना है।
कभी तो पता चले कि ये क्या चीज है तो अपने नाम से नाम मैं भी खाता है वो भी खाता है हमको भी अच्छा लगता है हमको भी अच्छा लगता ही है मैं तो खाता है चक्रवर्ती का इतना इतना आता है तो हमको तो उतनी भी संपत्ति नहीं उतना भी परिग्रह नहीं फिर हमारा कहाँ इतना दोष है ऐसा करके हमको तो आ पड़ा है माथे पे जैसे कोई आ पड़ती है बात तो फिर उसको निपटा नहीं पड़ती ऐसा आ पड़ा है तो खुद ही उलझते हो अलग अलग
नेत्र में जो वैराग्य झलकता है नेत्रों में जो वैराग्य झलकता है वहां तक इसकी नजर पहुंचती है।
रसा में उनकी चेष्टा अलग होती है रस नहीं आते उनकी चेष्टा करके दिव्य ध्वनि से भी लाभ नहीं होता उसको फिर और किससे लाभ हो? वह दिव्य ध्वनि भी अपने को स्वयं को छोड़कर एक भिन्न विषय ही है। यहाँ पर सुनने के बहिर्मुखी परिणाम से छुपकर अंतर्मुख होने की प्रेरणा है। तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि मिले, कितना हमारा पुण्य है, बहुत भाग्यवंत है, बड़े भाग्यशाली है, भगवान के बारे सुनने को मिलती है। बहिर्मुख होकर तो सुनते वाणी का वाच्य अगर आता है तो कोई उनका छूट जाती है। वाणी का वाच्य तो परमात्मा पर है, निज पद है, निज पद में तो सन्मुखता छोड़नी है। पर वाणी में भी ये बात बार बार आती है, तुम तो अंतर्मुख हो, हमारे ओर से छुपकर अंतर्मुख हो, अंतर्मुख हो। ज्ञानी उपाध्याय के साथ साथ चलता जाता है। इसका मतलब क्या? ज्ञानी उपाध्याय के साथ साथ चलता जाता है, बहता जाता है। पर्याय दृष्टि होने से परिणाम का उपाध्याय होने पर उतना ही में है। पर्याय दृष्टि में तो जितनी पर्याय उतना में है, स्वयं का उत्पाद ज्ञान होता है, पर्याय के साथ चलता रहता है। उत्पाद हुआ तो मेरा, व्यय हुआ तो मेरा। परंतु ज्ञानी ने नीति में अपना अस्तित्व